इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको इमरान हसन की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक हैं, साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ आज के प्रोग्राम को भी सुनने के लिए मेरे ये मानिए बिल्कुल साथ साथ है, मेरा FM 107.4 लाइव ट्यून इन किए हुए हैं इन कर्राजी लाहौर इस्लामाबाद सियालकोट पिशावर भावलपुर और सारे जहान में थ्रू आर स्ट्रीमिंग लिंक MeraFM.com। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू शो, गेट इन टच। सो व्हाट डू न्यू 6th of March 2024 यानी कि 6 मार्च सन 2024 21वीं सदी के 24वें साल के तीसरे महीने की 6 तारीख बुध। ऑलराइट वापस आ चुके हैं, Facebook/ImranHasanWorld, Instagram/ImranHasanWorld। अटेंड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे, थोड़ी सी अपनी सुस्ती भगाएंगे, आपको वापस बुलाएंगे और साथ बिठाएंगे, बातें बताएंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ पूछेंगे और आगे चलते चले जाएंगे। 10:37 King got this with this brand new, oh no, brand new, did this super happening remix, brand new निकला मेरी आंखों से, brand new तो कहीं से भी नहीं था ये। खैर, thank you very much for tuning in, I hope आप मेरे साथ हैं, back to back चल रहा है music का सिलसिला। With that we are adding your messages, अगर आपने मुझे भेजे Instagram/ImranHasanWorld पर तो हम जरूर चाहेंगे कि हम उन्हें शामिल करें। सिब्रा, thank you very much आयशा, thank you नाइला, thank you शिजा रफाकत, thank you हैदर जिलानी, Hira, Nufail, Mahnoor, Wafa, thank you, Ahmed, thank you, Saima, you are from, कहाँ से, Saima कहाँ से, शहर का नाम नहीं है, Sadia from Karachi, welcome Sadia, Hassan Khan, Lodi from Sargodha, Zainab, Lahore, Hina Aziz from Karachi, hello, Jameel from Fateh Jung, Hakim from Karachi, Hakim Khalil, thank you Hakim. Then Laiba says, I am from Baghun ka Shahar. Sunaina Asif from Lahore. Ikra Danish and Uruj Shehzad. Glorious for the largest Sufi shrine in South Asia. Achha, theek hai. Uruj Shehzad sahiba, bada ghuma ghuma ke. Aaj to googliyan aari hai, mujhe googliyan phenk rahe hai tum log. Achha bhai, to what's up ji? PSL kaun se log follow kar rahe hai? Jo follow kar rahe hai, unko maloom hai ki PSL mein kya chal raha hai. Karachi aur Lahore ke liye achha nahi chal raha. Lekin Karachi abhi tak game mein hai. Kuch log jo pareshan ho rahe hai na, Karachi ka ki banu. To Karachi to game mein hai. Aage dekhiye hota hai kya. Achha, ye badi dilchasp baat hai na, ki kabhi aap nahi sote hain to aapko neend aati hai. Kabhi aap bahut sote hain tab bhi aapko neend aati hai. Ka matlab ye hai ki sirf neend aati hai. Sona na sona matter hi nahi karta. काम नहीं ना करना, काम चोरी चल रही है जिंदगी में यार। और बताएं क्या चल रहा है भी आपकी जिंदगी में, आज वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रही है टोटली, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यूजुअली तो आपकी तरफ से मेरे जहन में जवाब आ रहे होते हैं ना, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इट्स टोटली वन साइडेड फ्रॉम माई साइड। और वैसे भी मौसम ने एक अजीब आंख में चोरी लगाई हुई है, दिन में एसी चलाने पड़ते हैं, रात को हीटर चलाने पड़ते हैं, लगता है कि ये सेहत खराब करके छोड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। So today it was between Lahore Qalandars and Islamabad United. और मैच कौन कौन देख रहा है यार, मैं जानना चाहता हूँ, कौन कोई बताए ना। अच्छा जी, तो आज it was I think 23rd match, 23वां मैच था, 7-4-11 मैचेस और बाकी हैं वैसे PSL 9 के। लाहौर कलंदर्स के हिस्से में पहली फतह आ गई है और वो पहली फतह आई है इस्लामाबाद, मतलब तुमने जीतना ही था, लाहौर कलंदर्स तो यूनाइटेड के खिलाफ ही जीतना था यार, किसी और टीम के खिलाफ जीता था। खैर, आज के मैच के अंदर 162 रन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चेज नहीं कर पाई है। कभी कभी जो यूनाइटेड की टीम है ना, इसकी वाइब बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम जैसी लगती है, कि वो कहते ना गुजर जाए तो पहाड़ से और रुक जाए तो एक किसी छोटे से पत्थर से, बिल्कुल ऐसा ही है। अब 162 रन तकरीबन ये बनते हैं जी, 7-8 की औसत से ये रन बनते हैं और नहीं बना पाए जी आज। और इस तरीके से आज का जो मैच है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया, सिर्फ 145 के ऊपर पूरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउट हो गई, 18.5 ओवर्स, आई मीन दे स्टिल हैड 7 बॉल्स लेफ्ट और हार गए इस तरीके से। पहला मैच लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट के अंदर जीता, आई थिंक उनका 7वां मैच था और ये पहली फतह उनके हिस्से में आई, उसके अलावा एक पॉइंट उन्हें बारिश ने दिया था। खैर चलें, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कुछ ना कुछ तो मिला उनको। गाना चलाया नहीं मैंने कभी, मैंने कहा सोच चला के चेक करते हैं कैसा है। इट्स बाय एआर सोनू. ही इज अ गुड सिंगर बाय द वे. पाकिस्तानी है. पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं काफी पाकिस्तान में. आज पाकिस्तान के दो बड़े सूबे हैं, एक तो खैर सबसे बड़ा है पंजाब और दूसरा छोटा सूबा है, लेकिन अपने लिहाज से इतना छोटा नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा है. वहां पे भी कैबिनेट का ऐलान किया गया है, नए वुजरा आए हैं, नई हुकूमतें बनी हैं. सो पाकिस्तान के अवाम आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके लिए क्या सोल्यूशन है. अक्सर जब हम अपने टॉक शोज में पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो ज्यादातर तो सियासी मफादात और सियासी एजेंडों पे बात होती है. मेरे ख्याल में अब जो सियासी एजेंडों पे बात है, सियासी मफादात पे बात है, वो तो हो चुकी. मुझे लगता है कि अब इससे बढ़ के अवाम के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करनी चाहिए. जो बजट एलोकेशन है उनको डिस्कस करना चाहिए, कहाँ पे कितनी बजट, कितने बजट को एलोकेट करना है और क्यों करना है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए. एक तो ये कि अब अपनी तरजीहात को भी देखना पड़ेगा. इससे पहले हमने भी शायद, क्योंकि हम सिग्नलिंग ऐसी करते हैं ना अपने रूरल्स को कि वो उसी तरफ डेवलपमेंट करते हैं या उसी तरफ बजट स्पेंड करते हैं जिस तरफ से उनको लगता है कि ये करने से हमें पब्लिक डिमांड हासिल हो जाएगी या फिर ये करने से हमें पब्लिक सपोर्ट हासिल हो जाएगी. जैसे कि गलियां, मोहल्ले और इसके अंदर ये जो सड़कें बनाना या पुल बनाना एंड ऑल दैट. मेरे ख्याल में हमें भी थोड़ी अपनी सिग्नलिंग बेहतर करना होगी टूवर्ड्स ऑल दीज पब्लिक फिगर्स या डिसीजन मेकर्स. हमें भी ये बताना होगा कि अगर आप हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा पुल या फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसकी निस्बत अगर आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो हम आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे. अगर आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं या आप एक कॉलेज बना रहे हैं या आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं एज कम्पेयर टू सम अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो हम आपको ज्यादा बेहतर रेट करेंगे. तो मेरे ख्याल में ये लोग भी फिर अपनी जो तवज्जो है ये उस तरफ से हटा के, यानी कि सड़कों पुलों से हटाकर ये इस जानिब लगाएंगे. दो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही जरूरी है जी. आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे रहते हैं, रिसेंटली हमने देखा है कि थोड़ी बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उससे बहुत फायदा हुआ है लोगों को. कई नई हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं, दो की हाउसिंग सोसाइटीज को भी रेगुलेट करना जरूरी है. लेकिन एक तरफ आपके मुल्क की जो रिहायशी जरूरियात हैं वो भी तो मौजूद हैं. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लोगों के लिए जो कम्यूट करना है वो बहुत आसान हुआ है. आना जाना, फासले कम हुए हैं, लोगों के खर्चे कम हुए हैं, जो लोगों की फार्म टू मार्केट एक्सेस है वो बेहतर हुई है. सो इसमें देर आर सर्टन पॉइंट्स, यू नो, वो भी बहुत जरूरी है. लेकिन जो प्रायोरिटाइज करना है आपने, जैसे कि हमारे वी गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किड्स हु आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू द स्कूल्स इवन, उनकी तरफ देखना कि वो बच्चे जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे. पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ पे ये रेशियो सबसे ज्यादा है. इसी तरह हम हेल्थ को देखते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ पे ये रेशो सबसे ज्यादा है कि जो बच्चे जो नो मौलूद बच्चे होते हैं, जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मरते हैं. तकरीबन 125,000 बच्चा हर साल मर जाता है. बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं जानते और मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ कि आप सोचिए कि अगर 125,000 बच्चा, एक खबर आई कि जी 125,000 बच्चा मर गया, कितनी बड़ी खबर हो, ये दुनिया हिल के रह जाए कि 125,000 बच्चा मर गया. और पाकिस्तान में हर साल इतने बच्चे मर जाते हैं, उनके मल्टीपल रीजन हैं, मल्टीपल इशूज हैं. तो ये तो चंद एक चीजें जिसकी हम बात करें. मुझे लगता है कि जो तरजीहात हैं उनका तायुन बहुत जरूरी है और वो तायुन तभी होगा जब हम राइट वे में सिग्नलिंग करेंगे, हमारी डिमांड्स ठीक होंगी. हमारी डिमांड्स अगर गली मोहल्ला सड़कें और पुलियां और हमारी फातिहा में नहीं आया, हमारे जनाजे में नहीं आया, हमारा MNA MP है, ये होगा तो फिर तो कभी ठीक नहीं हो सकता. चूंकि वो फातिहा पढ़ने आ जाएगा, जनाजे में आ जाएगा, हल्की फुल्की पुलियां बनवा देगा आपको और आपके बच्चे उसी तरह से जाहिल पड़े रहें, आपकी बच्चियां उसी तरह से स्कूल ना जा पाए और बस ये फिर जैसे चल रहा है 75 साल से वैसे ही चलेगा. इसको पूरा टर्न अराउंड करने की जरूरत है और इस टर्न अराउंड करने के लिए आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए. अब बहुत से लोगों का मसला ये है कि वो सियासत करते करते मकामी सतह पे, अपनी सतह की सियासत जो है वो करते करते इस हद तक चले गए हैं कि वो किसी को कबूल करने को तैयार नहीं है. वो ये भूल रहे हैं कि आपके कबूल करने या ना करने से बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो शख्स इस वक्त इख्तदार के अंदर आया है, आपकी मोहब्बत से बढ़ के बहुत जरूरी यह है कि क्या वो इस काबिल है कि वो आपके लिए कुछ कर सके. ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उसको ले आए जो कुछ ना कर सके, तो उससे वो शख्स बहुत बेहतर है जिससे आपको मोहब्बत ना हो लेकिन वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, फायदा मंद हो. तो प्लीज आप अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा शिफ्ट करें और इस चीज को देखें कि कौन आपके लिए परफॉर्म करना चाहता है, कौन आपके लिए आपको सर्व करना चाहता है, बजाय इसके कि आप कहते हैं कि नहीं हमें तो वो वाला चाहिए चाहे वो करे या ना करे. ये बहुत ही फजूल अप्रोच है. ये फजूल अप्रोच है. ममालिक में अकलमंद मुआशरों में और पढ़े लिखे मुआशरों में ये अप्रोच नहीं होती है, चूंकि हमें पसंद वो है, ठीक है। आप बेहतर ये है कि आप पसंद भी उसी को करें जो प्रोडक्टिव हो, यानी कि पसंद प्रोडक्टिविटी के बाद आनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बाद में आती है, पहले पसंद। पहले हमें ये वाला चाहिए, बाद में देखेंगे परफॉर्म करता है कि नहीं करता। अरे भाई, पहले उसकी परफॉर्मेंस देखो, फिर उसको पसंद करो। उसको पसंद ही परफॉर्मेंस की बेस पे करो। ये कोई रिश्ता थोड़ी हो रहा है कि आपको पहले पसंद होना चाहिए। ये रिश्ता नहीं हो रहा, ये बेसिकली आप किसी को इख्तियारात दे रहे हैं, किसी को, किसी के हाथ में आप अपनी बागडोर दे रहे हैं। और एवरी 5 years आर क्रूशियल, लेकिन ये वाले जो 5 साल हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने भी फैसले करने हैं पाकिस्तान के, वो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन में पाकिस्तान। होता ये था कि पहले हम मुख्तलिफ किस्म की जंगों में चले जाते थे क्या, या भेज दिए जाते थे इस तरह की चीजों में जाकर, कुछ ना कुछ पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड्स मिल जाती थी। हम हर दफा, हर थोड़े अरसे के बाद थोड़ी सी इमदाद, चुंगा जिसे कहते हैं, देखते थे, वो चुंगा आ जाता था, काम चल जाता था। पिछले कुछ अरसे से हम एक्सपोज हो गए। एक साहब ने आके पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, खुद को बार बार, खुद को इतनी बार करप्ट कहा, खुद को इतनी बार चोर कहा कि दुनिया को पता लग गया कि अच्छा यार, वाकई ये करप्ट और चोरी है। खुद को ये कहते हैं ना कि अपने तन से इतनी बार कपड़ा उठाया कि दुनिया को दिखा दिया कि हम ये, अब दुनिया आपकी बात मानती नहीं, अब आप बहुत ही ट्रबल के अंदर है। तो उस ट्रबल से निकलने का बाजू का ब्लेसिंग डिस्गाइज होती है। कुब्बे नू लत लगी सी, कुब्बा सीधा हो गया सी। हम वो कुब्बे हैं जिन्हें लत लग गई है कि अब दुनिया पैसे नहीं देती है। अब दुनिया ने कहा भी कमाओ और अपने 25 करोड़ 26 करोड़ को खिलाओ, अदरवाइज हम नहीं देते आपको। अब वो जो 25-26 करोड़ जो कि इस चीज पे आदि हुए थे कि बाहर से पैसे आते हैं, इधर उधर से, और काम चल जाते, अब काम नहीं चल रहा। तो अब इसलिए ट्रबल बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है, आपको भी हो रही है। सुबह शाम हम कुड़ते हैं, तड़पते हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। जो लाखों कमा रहा है वो भी परेशान है, जो हजारों कमा रहा है वो भी परेशान है। लेकिन अल्टीमेटली ये परेशानी हमेशा तो नहीं रहनी, सिर्फ उस सूरत में अगर फैसले अब ठीक होंगे। अगर आपको कैंसर है और उसकी सर्जरी ठीक नहीं कर रहे आप, महज ऊपर ऊपर से उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैंसर तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, कैंसर तो आपको डैमेज कर रही है। हाँ, अगर आपने सर्जरी राइट डॉक्टर से राइट टाइम पे करवा ली और औखी करवा ली, पेन बर्दाश्त करके करवा ली, जैसे बुलेट खुदा ना खास्ता लग जाए ना, तो जब बुलेट निकालनी बाजू का मुश्किल होती है, लेकिन अगर निकल आए तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार अब बुलेट निकल आई, अब अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर बुलेट अंदर रहे तो हर वक्त खदशा रहता है कि यार खुदा ना खास्ता कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी भी कुछ कुछ इसका जहर फैल सकता है। तो इसलिए अब जो सर्जरी है वो डीप चाहिए, वो मेजर चाहिए, वो सीरियस चाहिए, वो मेजर, डीप एंड मेजर सर्जरी जो है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ हल निकलना शुरू हो जाएगा, और हल निकलने में टाइम लगेगा। जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी साल बाद, 2 साल बाद, तो अभी दूध और शहद दोनों की जो नहरें हैं वो जमीन के बहुत नीचे हैं, उनके निकलने में बहुत टाइम लगना है। आपने ये जो मुश्किल वक्त इस वक्त गुजर रहा है, अगर आपके जहन में कि अर्जी है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। मुझे कम से कम अगले 5 साल टफ नजर आते हैं, 4 से 5 साल टफ कम से कम नजर आते हैं, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो उसमें तो कोई खास आसानी होने वाली नहीं है। आपके लिए आसानी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जो भी आपके वसाइल हैं उनको थोड़ा सा रिजर्व कर लें, उनको थोड़ा सा महदूद कर लें, शादियां बहुत महंगी करना छोड़ दें, कपड़े जो पहनते हैं उसके अंदर किफायतशारी ले आए, खुराक जो खाते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हम करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे आप कहेंगे कौन से करते हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा बिजली जलाते हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा पानी लगाते हैं, जैसे हम अपने वर्किंग आवर्स को लेट शुरू करते हैं। पूरे लाहौर के अंदर 1 बजे से पहले मैंने देखा है मार्केटें नहीं खुलती, 12 बजे 1 बजे मार्केट्स खुलती हैं। सुबह अगर 6 बजे सूरज निकले और आप 12 बजे मार्केट खोले तो 6 घंटे तो आपने जाया कर दिए, 6 घंटे आपने सनलाइट के जाया कर दिए, जिसमें आपकी दुकान को शायद लाइट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी रात में होती। अब आपने क्या किया, 6 घंटे लेट दुकान खोली, और फिर जारी बात है उसे सूरज डूबने के 6 घंटे के बाद बंद करेंगे, तो आपने रात के 6 घंटे कंज्यूम किए, दिन के नेचुरल रोशनी के 6 घंटे जाया किए, और फिर क्लेम क्या किया कि बिजली महंगी है और बिल ज्यादा आते हैं। अब हुकूमत रेगुलेट नहीं करती, सिर्फ ये डरते हुए कि भाई रेगुलेट करेंगे हड़तालें हो जाएंगी, ताजर माइंड कर जाएंगे, और ताजर माशाल्लाह इस चीज पे आते नहीं है कि जी हम अर्ली दुकानें खोल लें कोई बात नहीं, शाम हम 5-6 बजे बंद करेंगे, हमें सनलाइट के अंदर काम करना है, मुल्क की बिजली भी बचेगी, हमारे बिल्स भी कम आएंगे। अब ताजर क्यों नहीं खोलते, चूंकि जल्दी कस्टमर ही नहीं आता। कस्टमर कौन है, मैं जो बातें करता हूँ यार महंगाई बड़ी है, मुल्क ठीक नहीं होता। तो अल्टीमेटली हम सब मिल के ये सारा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। हमने जल्दी उठना नहीं है क्योंकि हमने जल्दी दुकान पे नहीं जाना, दुकान वाले ने जल्दी दुकान नहीं खोलनी क्योंकि जल्दी कस्टमर ने नहीं आना, और फिर सो एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता। तो ये पूरी मेजर सर्जरी स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, एक आम पाकिस्तानी शहरी से, हमेशा सबसे आसान क्या है, जो ही बात हो जी हुक्मरान ही चोर है जी, होंगे सर, आप कौन सा मुल्क के अंदर पौधे लगा रहे हैं, कितने पौधे लगा चुके हैं आज तक जिंदगी में आप मुल्क के लिए, तो मेजर सर्जरी स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ अस, उसके बाद कोई सूरत हाल बेहतर होगी तो हम शायद ये जो डिसअपॉइंटमेंट का सा माहौल है इससे थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो जाए और अपना काम हम सारे सही तरीके से करें, जो गाड़ों से निकलें, शॉर्टकट से निकलें। अगर हम पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन प्रॉपर हासिल करें ना, सिर्फ डिग्री के लिए पास होने के लिए ना करें। अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जो कि ऐसा ही है कि जी डिग्री के लिए लोग पढ़ते हैं, आप पेपर काले करें आप पास हो जाते हैं, नंबर मिल जाते हैं आपको, तो आप पेपर काले कर आए, डिग्री ले लें, लेकिन लर्निंग तो आपने खुद करनी है ना, यानी कि डिग्री के लिए पेपर काला किया, घर आके किसी चीज के ऊपर प्रॉपर रिसर्च अपने लिए की कि मुझे वैसे ही ये पता होना चाहिए ये क्या है, वहां से आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी ना। और फिर जब आप 10 लोगों के बीच में जाएंगे, 9 ऐसे जिन्होंने पेपर काले करके डिग्री ली हुई है और 10वें आप जिसने पेपर काले करके डिग्री ली हुई है लेकिन उसको पता भी है, उसने रिसर्च भी की हुई है, तो आप डेफिनेटली उनसे सुपीरियर होंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कहते हैं जी नौकरियां सिफारिशों में मिलती हैं, कौन सा सेट है जिसने नौकरी देनी है और उसको कोई काबिल आदमी नहीं चाहिए, उसको कोई काबिल, वही नौकरी सिफारिश पे मिलती है जो आप सिफारिश पे लेना चाहते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियां, जिस क्योंकि आपको आसानी चाहिए ना जिंदगी में, काम ना करे तनख्वाह आ जाए। अगर आप काम करके तनख्वाह लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे कॉम्पिटिशन होगा, जीतेंगे तब जब सिर्फ पेपर काले नहीं किए होंगे, साथ सीखा भी होगा कुछ, अल्टीमेटली घूम के आपके ऊपर आएगा, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर आएगा। जहां से भी जाएंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साइंसदान, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान, बहुत बड़े बड़े जर्नैल, बहुत बड़े बड़े जजेस, जितने भी बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत बड़े हैं, वो सारे मुझ में और आप में से हैं, वो यहीं से ऊपर हुए हैं, और सिर्फ ऊपर इसलिए हुए हैं कि उन्होंने जिंदगी में कुछ तो मुख्तलिफ किया है ना, जो बाकी लोग कर रहे थे वैसा नहीं किया, कुछ तो मुख्तलिफ किया उन्होंने। बहुत लंबी हो गया बात यार, वापस आते हैं, आपसे गपशप लग सकती है अगर आप चाहते हैं, 04236408074 पर आप कॉल कर लें, हम आपसे गपशप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल कॉल किया था तो आज मत कीजिएगा, जिन्होंने कल कॉल किया था वो आज नहीं करें, अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं 3640 8074 042 के इजाफी कोड के साथ आप मुझे फोन कर रहे हैं, कर सकते हैं। कुर्सी 0 42 36 40 80 74, आई एम इमरान हसन, लाइव जा रहे हैं हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पिशावर, भावलपुर में। पिशावर किधर है, पिशावर वालों मतलब अगर जलमी के मैचेस पिशावर में नहीं हो रहे तो क्या आप हमें फोन नहीं करेंगे? That's not good, my dear पिशावरी people. हमारे एक दोस्त आजकल पिशावर में वैसे घूमने फिरने गए हैं, तरह तरह के खाने, ओए होए होए, कल गए नमक मंडी वो, और उधर से उन्होंने कोई लेवल की पोस्टें लगाई और हमें टैग किया साड़ा हमें। इट्स बीन एजेस। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, पिशावर में मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, दोस्त हैं कुछ वैसे, लेकिन मैं उनके लिए भी नहीं आऊंगा, खाने के लिए आऊंगा मैं। कभी जिंदगी में मौका मिला पिशावर हम खाने के लिए जाएंगे भाई, ये हमारी कमिटमेंट है अपने आपके साथ, और हम अगर खुद से कमिटमेंट कर लें तो फिर हम अपने आप की तो सुनी लेते हैं, हम सलमान खान थोड़ी हैं, लेकिन जाएंगे सही। बहुत ज्यादा जबरदस्त मूड हो गया हमारा, द काइंड ऑफ फूड दैट नमक मंडी प्लेस हैज, ना कहते हैं यार टेस्ट तो बहुत ही लेवल का है, और कुछ जगह बड़ी मशहूर है। अच्छा अभी मुझे ये पता चला कि वहां भी कुछ ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो क्या इन्हें कहते हैं यार, एक तो मिल्क शेक्स होते हैं ना, वो जो स्मूदीज टाइप चीजें होती हैं, कुछ एक दो बड़ी अच्छी दुकानें उन्होंने एक्सप्लोर की और मुझे उन्होंने बताया कि भाई वहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म के ये आपको जूसेस टाइप चीजें मिलेंगी, आपको मजा आ जाएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो मैंने कहा पिशावर और स्ट्रीट फूड इतना मशहूर नहीं है, लेकिन हम जाएंगे जरूर, वहां पे बारबेक्यू वगैरह या कबाब वगैरह ऑब्वियसली बड़े मशहूर है वहां के, ये वाला आइटम जो है ना ये बड़ी हमारे लिए दिलचस्प किस्म की एक तखलीक है। सो पिशावर वालों हमें बुला लो।
मैं होते दूजीते हुए तू,
मेरे साथ कॉलर हैं कोई, मुझे लगता है इनके पास बहुत टाइम है। हाँ जी हैं आप?
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम।
आसिम बात कर रहा हूँ पिशावर।
ओए होए होए, तुम्हें मेरी बात लग गई ना आसिम, मैंने एक पिशावर वालों की बात की है ना।
लग गई।
कैसे हो?
टिक टक।
मतलब लग गई से मुराद ये कि महसूस कर गए ना तुम के यार भाई ने गाया पिशावर वाले का।
अच्छा दे दूं।
नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिशावर में मेरे लिसनर्स बहुत हैं, मुझे पता है बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन वो एक तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है।
अभी मैंने 2-3 दोस्तों को भी बताया, वो उसने वो नेट से डाउनलोड करके वो सुन लेते हैं, मुझे आज... कह रहे कि यार बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होते हैं।
चलो उनकी मेहरबानी है, वैसे आजकल जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं ना उनको नफरत ही हो जाएगी मुझसे, कहेंगे क्या बोर बंदा बड़ा, क्योंकि पिछले तीन चार प्रोग्राम से तो मेरी अपनी
चार दिन से तो मैंने भी नहीं सुने, आज सुने, क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गया।
क्यों, क्या हॉस्पिटल में क्यों, खैरियत है?
मेरी सास बीमार थी, मैं जा रहा था उनके पूछने के लिए.
सास नंबर वन, सास नंबर टू?
नहीं, नंबर टू सास.
सास नंबर टू, अच्छा. नई सास के लिए एक दवाई, पुरानी सास के लिए दो दवाई.
आपको पता है डिफेंस में स्ट्रीट होते हैं.
डिफेंस में क्या होता है?
अपने घर से ये स्ट्रीट वगैरह होते हैं ना, गलियां होती
है. हाँ हाँ, गलियां होती हैं.
तो मैं अपने घर से निकल के जा रहा था और दूसरी गली से बाइक वाला बहुत तेज आ रहा था.
ओए होए होए, अच्छा.
बॉय था, उसने मेरी गाड़ी को मार दी.
ओए होए,
बस क्या? बेचारा, उसका पाँव और एक हाथ और एक पाँव टूट गया.
अच्छा, गलती उसकी थी?
फिर उसको गलती तो उसकी थी क्योंकि कैमरे वगैरह लगे हुआ था.
अच्छा.
उसके एक चाचू ने बहुत बदमाशी करा था, कह रहे कि मैं एफआईआर कर दू. ये मैंने कहे जाओ जाओ कर दो एफआईआर. फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया, उनकी ये तीन चार दिन आना जाना आना जाना.
ये अक्सर लोग करते हैं ना कि उनकी गलती की वजह से अगर उन्हीं का नुकसान हो जाए तो कहते हैं हम तो पुलिस में जाएंगे, और ये अक्सर होता है.
हाँ,
तो सीसीटीवी कैमरे बड़ी हेल्प करते हैं इसमें.
मुझे तो बहुत अजीब, ये बाइक वाले और खासकर ये डिलीवरी सर्विस वाले, ये बहुत तेज चलाते हैं बाइक.
ठीक कह रहे हो आप, ऐसी है. मेरे घर के बाहर
लाइट भी नहीं है ना, बाइक की लाइट भी ना हो.
हाँ, बाइक की लाइट ठीक नहीं करवाते, पुरानी बाइक्स होती हैं उसको ठीक नहीं करवाते, और अपना भी नुकसान.
गाड़ी भी तबाह कर दी है उसने, अभी नया लिया था.
ओए ओए, क्या कितना नुकसान हुआ है?
नुकसान तो अभी मैंने वर्कशॉप लेके गया हूँ, फिर बस अभी फिलहाल पता नहीं कितना खर्चा आएगा.
तो इंश्योरेंस नहीं कराई थी गाड़ी?
होंडा में लेके गया था ना.
अच्छा जी, नहीं तो इंश्योरेंस नहीं कराई थी गाड़ी की क्या?
नहीं, इंश्योरेंस नहीं कराई.
तो कराना थी ना. मड़ा कंजूसी करते हो, अब इतने पैसे खुदा ना खास्ता लग जाने हैं उस पे.
लगेंगे तो लाजमी.
हमारे असल में कल्चर नहीं है ना. हाँ, 2024 मॉडल गाड़ी की तो इंश्योरेंस करानी थी ना. उसकी अगर एक लाइट ही तब्दील कराओगे तो लाख रुपया तो उसी में खुल जाना है आपका. क्या फायदा?
ये तो है, बस अभी दोस्त लेके गए.
चलो, अल्लाह करे कम खर्चा आए, लेकिन पक्की आ जानी अच्छी खासी, मुझे लग रहा है.
ये तो है.
चलो, सदका वगैरह लाजमी देना अपना.
नहीं, सदका तो दे दिए हुए.
हाँ चलो, गाड़ी तो बनी जाती है, लेकिन
वो तो हर महीने अपने बच्चों के, अपनी वाइफ.
हाँ,
अपनी सारी हर महीने.
चलो कोई नहीं, बाकी तो ये थोड़ा बहुत जो आजमाइश है ना, ये ठीक होती है, इंसान को अल्लाह से कनेक्टेड रखती है.
आज तो आपने टीवी प्रोग्राम में कोई काजल लगाए थे इनको, मैं काले काले
काजल लगाए थे. नहीं, क्या महसूस हो रहा था?
हाँ, मैंने कही पता नहीं आज इमरान भाई ने काजल लगाई
हुई यार. नहीं, वो मैं सोया कम होगा ना, वो आंखें सोया कम होगा ना, आंखें गहरी हुई होंगी, इसलिए आपको काजल लग रहा होगा.
हाँ, ये तो
ऐसा होता नहीं है. ठीक है, चलो सही है.
ठीक
है, चलो, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. काजल काजल मेरी आंखों का ये काजल, पागल. मैंने काजल लगाया था, मुझे पता ही नहीं है. हाँ, हेलो,
अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम,
क्या हाल है मानी भाई? खैरियत से हैं आप?
जी ठीक है भाई, आप कैसे हैं?
बिल्कुल आपकी तरह ठीक ठाक, मजे में.
अच्छा, कितने मजे में आप?
बस करम है यार मालिक का, दुनिया परेशान है, लोग बोलते हैं काम नहीं है. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रोज खाली हाथ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ दे के ही देखते हैं, रोज खाली हाथ नहीं जाते.
अच्छा, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है. क्या चल रहा है जिंदगी में सदाम साहब?
रिक्शा चल रहा था यार मानी भाई. यार तुम पहले वाले प्रोग्राम रखते थे ना, बड़ा ही तफरी आती थी उसके अंदर, जैसे कि लोग गाना गाते थे रोती या कोई वाले प्रोग्राम, उसमें बड़ा मजा आता है यार सुनने में.
अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए दोबारा. एक तो मेरी बात ही क्यों नहीं सुन रहा, बोले जा रहे हो. तुम्हारे लिए दोबारा करेंगे हम.
अच्छा, कल का रख लो मानी भाई.
नहीं, इतनी भी क्विक फरमाइश नहीं पूरी हो रही तुम्हारी, लेकिन करेंगे.
इतना वेला समझ.
हाँ, जितना नहीं, वेले तो कोई नहीं हो, मुझसे ज्यादा ही काम करते हो, लेकिन ये कि इतना क्विक पूरा नहीं कर रहे, लेकिन करेंगे. कह दिया तो करेंगे तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह जल्द करेंगे. और क्या नई ताजी क्या है, कुछ सुनाओ, क्या चल रहा है कराची शहर में? बड़ी बेर फायरिंग वायरिंग, बड़े लोगों के मोबाइल छिन रहे हैं यार.
हाँ यार, आज मगर ये अल्लाह का शुक्र है, पुलिस तो काफी तैनात हो गई है.
अच्छा?
अभी हमारे इलाके में बनारस के पुल पे उसको जब उसने दो भाइयों को मार दिया था ना, एक भाई मर गया बेचारा.
ओह माय गॉड.
और एक जख्मी हो गया था.
सही सही खबरें देना रेडियो पे हो, सही सही खबरें देना रेडियो पे हो, झूठी खबरें ना फैलाना.
नहीं नहीं भाई, बिल्कुल हकीकत खबर है. अब तो माशाल्लाह से ये पुल पे भी पुलिस वाले खड़े होने लग गए.
चलो अच्छा है ना, दोबारा से हुकूमत वगैरह बनी है तो
दौर गंदा चल रहा है मेरे लिहाज से तो.
नहीं, लेकिन तुम लोग
जान इंसान की जान की कोई औकात नहीं रही है कसम खुदा की।
बस गलियों वगैरह में जाते हो ना जब, तो वहाँ पे एहतियात किया करो। तो दूसरा ये कि वहाँ पे अल्लाह करे थोड़ी पुलिस एफिशिएंट हो ही जाए। सही है। चलो ठीक है सदाम, एहतियात करो यार। वैसे तुम्हारा मोबाइल छीन के क्या ही करेंगे, वो जितना तुमने पुराना रखा हुआ है मोबाइल उससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात, गरीब आदमी के लिए तो कीमती है ना भाई। यार स्मार्ट पुलिसिंग चाहिए ना पाकिस्तान के अंदर भाई। अब बंदे जितने खड़े, एक तो माशाल्लाह हमारी पुलिस की जो ना एफिशिएंसी पे बड़े सारे सवालात हैं। पंजाब पुलिस फिर भी बहुत बेहतर है बहुत सी चीजों में, उसकी ट्रेनिंग्स अच्छी हैं, उसके बजट्स अच्छे हैं कंपैरेटिवली बाकी सूबों के, लेकिन ट्रेनिंग्स को जदीद खतूत पे लाने की जरूरत है। फिर स्मार्ट पुलिसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाइना वगैरह जाए ना या इवन दुबई भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा पुलिस का फ्लड नजर नहीं आएगा। जैसे अब मैंने कुछ दिनों से मैं लाहौर में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि लाहौर में जब से ये सीएम मरियम साहब आई हैं उसमें पुलिस मुझे बहुत ज्यादा सड़कों पे नजर आने लग गई है। अब उनकी इंटेंशन शायद, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी इंटेंशन शायद ये होगी कि ज्यादा लोगों को एहसास तहफ्फुज हो कि जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है तो उनको तहफ्फुज का एहसास हो। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जगह जगह पुलिस से तहफ्फुज का एहसास नहीं होता, खौफ का एहसास होता है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि जब आप, जैसे मैं रात को रोजाना 12 बजे के बाद वापस जाता हूँ और जगह जगह जब मुझे पुलिस मोबाइल खड़ी नजर आती है तो मुझे एक अजीब सा डर आता है कि यार ये क्यों खड़े हैं, मतलब इस देर सम इमरजेंसी, क्या सूरत हाल है, क्यों है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे होना चाहिए कि आपका जो क्विक रिस्पॉन्स यूनिट है अगर वो जगह जगह पे है भी तो वो बिल्कुल पब्लिकली ऐसे ना खड़ा हो कि अब जैसे फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, बच्चे देखते हैं, उनके हाथ में गन्स होती हैं, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बच्चों की जहनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दो कि हम एक ऐसे माशरे में बड़े हो रहे हैं कि जहां पे ये सारी चीजें हैं। तो स्मार्ट पुलिसिंग मींस आपके जो यूनिट्स हैं वो इनविजिबल होने चाहिए, जो आपके स्क्वाड्स हैं वो इनविजिबल होने चाहिए, लेकिन आपके जो सर्वेलेंस है वो थ्रू आउट होनी चाहिए। कैमराज आप लगाएं, आप सर्वेलेंस करें, और कैमराज के अंदर चूंकि ऑलरेडी जीपीएस डिवाइसेज होती हैं या सिग्नलिंग डिवाइसेज होती हैं तो आपको पता लग जाए कि अच्छा यार इस वक्त गली नंबर 18 में फलां जगह पे एक मोबाइल स्नैचिंग हुई है, एंड इफ समबडी कॉल्स यू ऑन 15 या जो भी आपकी हेल्पलाइन है आपको विजुअली भी उसकी एक प्रूफ आपको मिल रहा हो। और वहां पे चाइना वगैरह में क्या होता है कि आपको कैमराज मॉनिटर कर रहे हैं, अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक्या हुआ है और उसने इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया है तो दे आर मॉनिटरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज वेल जिसने ये किया है, क्योंकि उनको डिफरेंट कैमराज में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वो गली नंबर 8 से गली नंबर 9 में गया है तो 9 नंबर वाला कैमरा उसको कैच कर रहा है और आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। देन आपका जो करीब तरीन इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो भी आपका स्क्वाड खड़ा हुआ है आप उसके जरिए उसको पकड़ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल सतही बातें कर रहा हूँ, टेक्निकल बातें मुझे नहीं पता, मेरा काम नहीं है, जितना मुझे पता है उतनी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जो पुलिस की विजिबिलिटी है ना ये मुझे लगता है कि एहसास तहफ्फुज़ तो नहीं देती है। उसकी वजह यह कि पुलिस का इमेज कोई बहुत अच्छा नहीं है ना हमारे जहन के अंदर, एक खौफ का सा एलिमेंट आता है, तहफ्फुज़ का एलिमेंट आता ही नहीं है पुलिस को देख के। ये मैं तो अपनी जाती इन्फॉर्मेशन, अपनी जाती जो मेरा एहसास है मैं बता रहा हूँ, एंड आई बिलीव आप लोग भी इससे अग्री करेंगे। तो वो ठीक होने में टाइम लगेगा, बेहतर ये कि स्मार्ट पुलिसिंग की जाए, चीज़ों को मॉनिटर किया जाए और ज्यादा विजिबिलिटी ना हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो एक्शन है ना वो होता नजर आए, वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कराची में तो इसकी बड़ी ही जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। वजह इसकी कि हम सामने दिखा देंगे पुलिस है और फिर जो वारदातें हैं वैसे ही जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम,
ठीक कैसे है जनाब?
जी ठीक ठाक
जी। मैं
जी खुरम साहब बताइए क्या कहेंगे
जनाब? क्या कहे, बस उदास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार थोड़ी सा गपशप लगा दे आपसे।
जी जी बताइए।
फारिग हूँ तो?
नहीं मैं फारिग तो नहीं हूँ जी, आपको लग रहा है फारिग?
सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही कुछ कह गया यार।
जी जी कोई बात नहीं यार,
चले यार। और नहीं तो मैं आपको अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा गीत सुना सकता हूँ।
सुनाइए खुद
रफी की आवाज में।
हाँ जी अपनी आवाज में सुनाइए, रफी साहब तो फौत हो गए, उनकी आवाज कैसे आएगी आप में? रफी साहब का गाना है ऐसा कहे, ऐसा कहे रफी साहब का गाना है मेरी आवाज में, रफी साहब की आवाज में आप कैसे सुना सकते हैं?
मेरी आवाज में।
जी जी सुनाइए सुनाइए, आप अकेले, आपने कहा मैं अकेला क्यों बोर हूँ, बाकी भी हजारों लाखों को करूँ रेडियो पे, तो करिए कीजिए।
जनाब
जी जनाब जी जनाब।
दिल फिर याद किया पर सिले रही है, दिल ने
फिर याद किया बर्फ सी
I'm sorry
तहराई है फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है
रफी साहब से माजरत भी करें हम
यही तो आवाज है यार
हाँ नहीं नहीं वही यही आवाज है बस है रफी साहब दी उन्होंने थोड़ा निमोनिया होया है इस तरह का शुक्र है वाकई में रफी साहब की आवाज समझ के सुनना नहीं शुरू किया मैंने खबरदार कर दिया ये ब्लाइंड है जी ये खुरम साहब इसलिए आते हैं तो ये बस अपने दिल की बातें करते हैं और हम भी सुन लेते हैं अच्छी बात है हेलो
जी भाई सलामकुम
अल्लाह खैर वालेकुम सलाम
जी भाई अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ लाहौर से आज आपने बातें की माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ हमारा आज
अच्छा चले
आपसे भी शायर लोधी से भी
अच्छा
उन्होंने भी आज माशाल्लाह बड़ा अच्छे टॉपिक के ऊपर बात की है
अच्छा अच्छा
अल्लाह पाक हमें शऊर जगाने की तौफीक दे और अपने अपने हिस्से के हम चिराग जलाते रहें
आमीन आप क्या करते हैं गफूर भाई
गफूर भाई क्या करते हैं हम गारमेंट्स का काम करते हैं यार
अच्छा कैसा चल रहा है
अल्लाह पाक का बड़ा करम है शुक्र है अल्लाह पाक का अब आप जो है ना अब हम अशरफ मखलूकात ना आदम की औलाद है ना तो अशरफ मखलूकात का लोगों को अभी तक जो है ना हमारे यहाँ ऐसा ना पता भी नहीं पता है कि अशरफ मखलूकात होता क्या है
बताए ना
अगर आपने आपने इनसे पूछना हो ना तो आप इनसे पूछना कि अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी आपको कितने वोट मिलते हैं पता चल जाएगा
वैसे भैंस तो वैसे तो भैंस बड़ी होती है नहीं अक्ल बड़ी होती है अच्छा कल मुझे तो वैसे लगता है साइज में तो वैसे भैंस बड़ी होती है नहीं
सही कह रहे
अच्छा ठीक है तो और कोई नई ताजी अब्दुल रहमान साहब
नई ताजी आप हुक्म करो जो बोले आज हम आपसे बहुत खुश हुए रोज मैं सुनता हूँ आपकी नोक जो कभी मजाक तो आज जो है ना आपने जो कौमी मामला से बात की बड़ी खुशी हुई
चले आपकी मोहब्बत
और शायर लोधी भाई ने भी जो बात की अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे चिराग जलाने की
आमीन आमीन तो बस कोशिश
करते रहेंगे इंशाल्लाह शऊर जगाते रहेंगे हम लोग मिलके
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया
बहुत अच्छा करेगा पाकिस्तान के
इंशाल्लाह इंशाल्लाह
बहुत प्यारा हो जाएगा ये पुलिस का कह रहे ना इनको मॉबलिंग चाहिए ना पुलिस जैसे बाहर भी होती है बाइक के ऊपर निकलती है रोड पे इस तरह से
वो कोशिश कर रहे हैं
नाके लगाए हुए
कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ने बहुत इम्प्रूव किया है हम तनकीद तो करते हैं बहुत दिन पे लेकिन बहुत इम्प्रूव किया पुलिस ने अपने सिस्टम बहुत बेहतर किया
आप बहुत बहुत बेहतर किया पंजाब में आपको पता है इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं दहशतगर्दी के उसके लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं
ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे
हमें तो पता है ना अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे तौफीक दे
बस ब्रदर दुआ में याद रखें और अल्लाह पाक आसानी रखे जी बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें फोन किया
ओके अल्लाह
थैंक यू ब्रदर बहुत शुक्रिया नो डाउट जी हमारी पुलिस ने बहुत इम्प्रूव किया लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दो वजूहात की वजह से आता है एक तो ऑब्वियसली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर शख्स इंडिविजुअल के अंदर भी और हर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी रहती है दूसरा हमारी आबादी बढ़ रही है ना चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो आपने उसके साथ साथ खुद को इक्विप करते चले जाना है किसी भी इदारे को तो वो एक थोड़ा मसला है आप मुझे फोन कर सकते हैं अगर आपका बात करने का मूड है या खुरम शहजाद की तरह और कोई आपका फोन नहीं उठा रहा आपको लग रहा है आप बोर हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं हो सकता है मेरे पास आपके लिए कोई मशवरा हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम
सर क्या हाल चाल है माशाल्लाह रोज आपकी बातें सुनता हूँ आपका प्रोग्राम सुनता हूँ रेडियो पे
जबरदस्त एक तो हमें यही बहुत अच्छा लगता है कि लोग रेडियो सुनते हैं इतना अच्छा मीडियम है रेडियो है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे
लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा माय एज इज 30 ईयर ओल्ड एक साल की उम्र हो गई है
अच्छा माशाल्लाह
लेकिन एक चीज के लिए मैं आवाज उठाना चाहता हूँ और उसके लिए आपकी फेवर चाहिए
बताइए
आवाज ये कि देखे हम लोग खुद बुरे हैं महंगाई हमारी वजह से कैसे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर लोग बैठे हुए हैं मैं एक चीज सोचता हूँ एक चीज सोचता हूँ महंगाई के हालात में, वो चीज ये है कि सर देखें कितने लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए कोई नहीं आवाज उठाने वाला कि किराया कम हो. नंबर दो, इतने किराएदारों की बेटियां जवान है, वो बेचारे अपनी बेटियों का दहेज इकट्ठा करें या अपनी तरीका राशन पूरा करें. ये सवाल ऐसा है जिसको हम सबको सोचना चाहिए.
सही बात कर रहे हैं.
क्या है, हमारे पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए तो बेटियां घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही
है,
जवान मसरूफ है.
अल्लाह सबके लिए आसानियां करे.
इसी वजह, यही वजह कि हमारा अल्लाह के ऊपर से एतबार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिखा है, जो फरमाया, उसके ऊपर से एतबार उठ गया.
अच्छा, एक हमारा बहुत, आपका नाम क्या है, सॉरी?
आजम अली.
आजम, आजम भाई, एक हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या, हम हर चीज को ना फिर अल्टीमेटली जाके किस्मत, तकदीर और अल्लाह की विल पे डाल देते हैं.
ऐसे ही
हम देखो, हमने जब कलमा पढ़ लिया ना, तो हमारा ईमान तो लाजिम और साबित हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नबी पाक उनके आखिरी नबी हैं, उनके बाद ला नबी बादी, और ये सारी तो चीजें, ये तो हैं बेसिक चीजें, ये तो वो बेसिक डिग्री है जो आपको मुसलमान होने के लिए चाहिए. जो आपके पास नहीं होगी, आप दारा इस्लाम में नहीं है, ये तो हो गया. लेकिन इसके बाद जो दीगर मामलात है ना, उसमें आपकी अपनी अकल, अपना फहमो फरासत, अपनी पढ़ाई लिखाई, इसके लिए पूरा ये जो इतनी ज्यादा तपस्या, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी स्ट्रगल थी ना हमारे सारे नबियों की, और फिर आखिर में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें कुरान पाक भी दुनिया में भेजा गया, फिर अहदीस की इतनी किताबें हैं, सियाए सत्ता हैं, सारी उसके अंदर जो मालूमात हैं. अब वो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हम उनसे सीखें और जिंदगी को सीख के गुजारें. ठीक है, लर्निंग का अमल हमारी जिंदगी में निकलना चाहिए. हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, जिधर जिधर हमारी नाकामी हो रही है ना, या जिधर हमें चैलेंजेस दरपेश है ना, उसको चुप करके अल्लाह की विल पे डाल देते हैं. जैसे कि मैं अपने गांव के हवाले से एक, आप फोन बंद कर दें, आपका बैलेंस जाया हो जाएगा, मेरी बात रेडियो पे सुने. ठीक है,
नहीं कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे कुछ एक शेर भी बोलना
आपको. अच्छा, आप चले शेर बोल दीजिएगा. मैं अपने गांव के हवाले से सोच रहा था कि मेरे गांव में मेरे वालिद साहब के जितने भी एज फेलोज है ना, मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए. मेरे वालिद साहब की उम्र 55 बरस थी जब वो फौत हुए, और इस तरह उनके जितने दोस्त थे ना, उनमें से कोई भी शख्स मुझे 60 से ऊपर जाता नहीं नजर आया. 60, 62, 58, 59, इस एज में ये लोग, इनकी डेथ हो जाती है. अब जब डेथ होती है, हम गांव के लोग जब फतेह के लिए बाद में बैठते हैं ना, तो सारे लोग आके कहते हैं जी अल्लाह दी मर्जी थी. अगो बंदे कहते जी हक होया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नु एंजी मंजूर है गाजी. हम यही कहते हैं ना. तो मैं, मुझे वो बात समझ नहीं आती कि हक तो डेफिनेटली हुआ है, किसी ने मरना है तो उसने दुनिया में आया तो मरना है, उसका एक वक्त है. लेकिन यार, क्या हम ये सोचने की जरूरत कर रहे हैं या जहमत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ, सिर्फ मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ, कि कोई क्यों बंदे जो हैं ये 60 साल की उम्र से ऊपर नहीं जा रहे, और 80% बंदे हार्ट अटैक से ही क्यों मर रहे हैं? क्या वो भी तकदीर ही है? माना कि तकदीर ही है, लेकिन उस तकदीर को हम जवाज नहीं दे रहे. ये गंदे गंदे घी खा के, एक्सरसाइज ना करके, वजन बढ़ा के, टाइम पे ना सो के, अपने लाइफ स्टाइल को इतना अजीबो गरीब करके कि हम हार्ट अटैक को दावत दें कि आ हमें हो जा, और जब हम मर जाएं हार्ट अटैक से तो हम कहें भाई हको है. आई मीन, अल्लाह ने हमें बताया है ना कि आप अपने जिस्म, जिसको आपकी हर एक अज्जाए तरकीबी होते हैं ना, एक हर चीज जिस चीज से बनी होती है, उसको आप, एक गाड़ी हाई ऑक्टेन के लिए बनी है, उसमें आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल डालेंगे, इंजन खराब हो जाएगा. हमारे जिस्म को जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, उसी तरह हमें ये भी तो बताया अल्लाह ने अंबिया की तिब के जरिए कि इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है. लेकिन हम अगर उसमें बुरा डालते जाएंगे तो एक दिन फूल के फट जाएगा, खराब होगा, मर जाएंगे, तो वो फिर क्या सिर्फ हम हक पे डाल देंगे? कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना. तालीम को क्यों लाजमी करार दिया गया है कि हमने कहीं ना कहीं खुद भी तो अपने हवाले से शऊर हासिल करना है कि भाई हमें भी तो शऊर मिले, हमने कहां पे गलतियां की हैं जो हम ना करें तुम्हारी जिंदगी. आपने जो बात की थी ना कि किराए कम हो, किराए कम हो या ना हो, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना किराए ज्यादा क्यों हैं. ज्यादा इसलिए हैं कि यहाँ पे मकान थोड़े हैं, लोग ज्यादा हैं. लोग क्यों ज्यादा हैं? गांव में नहीं रहते, शहरों में आ जाते हैं. अब अगर शहर में आके, या तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि शहर में आ गए, यहाँ पे महंगा किराए के मकान लेके आप नौकरी अच्छी कर रहे हैं, पीछे भी पैसे भेज रहे हैं, फिर तो समझ आता है. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो गांव में अच्छा भला घर बार छोड़ के शहर आ जाते हैं, शहर के चक्कर में इधर आके जलील हो जाते हैं. औरतें लोगों के घरों में काम करी होती है और गांव में उनका अच्छा रहन सहन होता है. मतलब गांव में हो तो वो मलिक होते हैं, इधर आए तो बेचारे उनकी खवातीन को घरों में. मैं मलिक की एक मिसाल दे रहा हूँ, चौधरी भी हो सकता है, मैं शेख हूँ, शेख भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो वो अच्छा खासा रहन सहन छोड़ के आके शहरों में आते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं. वजह क्या होती है? पीछे एक गलत फैसला की वजह होती है, और फिर कहते हैं किराए नहीं देने होते, फिर वापस जाना. कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी फैसला साजी को भी तो देखना है. कहीं ना कहीं हमने अपनी मुआशरत को भी तो देखना है, क्या उसकी वजह से हम अपने लिए मसाइल तो नहीं खड़े कर रहे। अब आप शेर बोल दीजिए।
शेर मेरी तरफ से आपको और माशाल्लाह रमजान के हवाले से आप सबको डेडिकेट, और ये पहली दफा मेरी रेडियो पे कॉल मिली है। शेर ये है कि रहमतों की आई है रात, रहमतों की आई है रात, मेरी दुआ है आप सब हमेशा रहो सदा आबाद, दुआओं में रखना हमें भी याद, मुबारक हो आपको ये प्यारी सी रात, मुबारक हो आपको ये प्यारी सी रात, बनाई क्या खुदा ने सोनी सूरत मोहम्मद की, तो एक आशिक जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की, कमाल हुसैन यूसुफ पर फकत आसिफ जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक हुए वो सूरत है मोहम्मद की, मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे हुक्म होगा जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की, हुक्म होगा जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की, और इतनी गर्मी में भी रोजे की हालत में, ये जितने भी माए बहन है मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इतनी गर्मी में भी रोजे की हालत में किचन में काम करने वाली सभी माओ बहनों को जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं सलाम कहती है। रमजान का महीना तो सबको नसीब होता
है, हमें तो भी नहीं मिलनी ना, हम तो खाने वालों में से। ठीक है ब्रदर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। माओ बहनों को जन्नत मिलनी चाहिए भाई, डिजर्व करती है, वाकई बहुत गर्मी में चीजें बनाती है, इसलिए हमने तो घर में कह दिया कि आप ना बनाएं जी, हमने अपनी वालिदा को कहा कि कोई आपको ये मुर्गन चीजें पकोड़े शकोड़े बनाने की जरूरत नहीं है इस दफा, और मैं जिंदगी में पहली बार रमजान में कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैंने कोई ये मुर्गन गिजाएं नहीं खानी है, खासतौर पर फ्राइड चीजें। मैंने सोचा हुआ, अब देखिए पहले रोजे को नीयत बदल ना जाए, अभी तक तो इरादा है। तो बिल्कुल जन्नत की हवाओं को सलाम करना चाहिए इनको जी, ये बहुत एफर्ट होती है, और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए अपने घर की जो खवातीन है उनकी कोशिशों को। तो आप अगर अपने गांव में हैं और शहर आने का इरादा कर रहे हैं, तो पहले आप प्लीज बड़ा अच्छा सा होमवर्क कीजिए, क्या आपका शहर आना ठीक है, अपने खर्चों का और अपनी आमदन का एक अच्छा कंपैरिजन निकालें, और अगर आपके गांव में आपका मामला बेहतर चल रहा है, जो बहुत से लोगों का चल रहा होता है, तो आपको शहर आने की जरूरत नहीं है। जब आप शहर कम आएंगे, अर्बनाइजेशन कम होगी, शहरों पे बोझ कम पड़ेगा, देहातों में लोग रहेंगे, तो घरों के किराए कंपैरेटिवली नहीं बढ़ेंगे। अब जब एक शहर के अंदर 100 मकान हैं और लेने वाले 150 या 200 हैं, तो ऑब्वियसली मालिक मकान उसका किराया बढ़ाएगा, ये तो एक यूनिवर्सल रूल है, दुनिया भर में ऐसी होता है, और हमारे यहाँ थोड़े हम ज्यादा पिस जाते हैं चूंकि हमारा इनकम जो सर्कल है वो कोई इतना वसी नहीं होता। तो एक तो ये कि कोशिश करें अगर आप अपने इलाकों में ही अपने आप को सेटल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों की तालीम शहरों में अच्छी होती है, तो इसमें फिर गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, खासतौर पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, कि आप जो गांव देहातों के जो इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको इतना अच्छा कर दें कि लोगों को कम से कम बच्चों की तालीम के लिए माइग्रेट करके शहरों में ना आना पड़े, लोगों को उधर ही इतने अच्छे स्कूल्स मिल जाएं, उधर ही इतनी अच्छी सड़कें मिल जाएं जिससे बच्चे ट्रैवल करके स्कूल्स में चले जाएं और टीचर्स मिल जाएं। तो इसके लिए अब आप आगे अगला स्टेप है टीचर्स, तो टीचर्स सबसे बेहतर तो ये है कि जो लोकल टीचर्स हैं वो लोकल स्कूल्स के अंदर लगाए जाएं, जिस गांव के अंदर स्कूल है वहां के जो असातज़ा हैं लड़कियां या लड़के, उनको उन्हीं के स्कूल्स में, उन्हीं गांव देहातों के स्कूल्स में ही उनकी पोस्टिंग्स की जाएं, उससे सियासत को निकाल दिया जाए, उनकी पोस्टिंग्स वहीं पर हो ताकि उनके लिए जाना आसान हो, रेगुलर जाएंगे और स्कूलों की कमी नहीं होगी। गाँव देहातों के स्कूल्स में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वहां पर टीचर्स नहीं जाते, अक्सर टीचर्स नहीं होते, इमारतें खड़ी होती, तो वो फिर कहते हैं जी ऐसे स्कूल चित पढ़ाई नहीं हैगी, तो वो मसला वहां से हल हो सकता है। फिर टीचर्स के लिए कि हाउ टीचर्स शुड परफॉर्म बेटर, आप जो बजट लोगों को दिखाने के लिए लगाते हैं ना, ये बना दिया वो बना दिया, उनसे उनके बजाय आप अच्छी इंटरनेशनल फर्म्स को हायर करें, उनको पाकिस्तान में इनवाइट करें, उनके लिए इन टीचर्स की वर्कशॉप्स करवाएं। जो टीचर इस वक्त किसी दूर दराज देहात में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उसको आप इज्जत के तरीके से 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लाहौर बुलाएं, पिंडी बुलाएं, बड़े शहरों में बुलाएं, उनको रखें, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, उनका एक्सपोजर बढ़ाएं, उनको बताएं कि दुनिया क्या कर रही है, ताकि वो आगे उस बच्चे को बताएं जो गांव में बैठा हुआ अलफ बे बटुआ ना पढ़ रहा हो, 2 × 4 ना पढ़ रहा हो जो हमने पढ़ा, वो उससे आगे, क्योंकि टीचर को पता होगा तो वो आगे डिलीवर करेगा ना। एक टीचर ने खुद कभी जिंदगी में जहाज नहीं देखा, वो कैसे बच्चे को बताएगा कि बेटा एक एयरप्लेन होता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे जाता है, दुनिया में ये है, और जनरल नॉलेज तो वैसे ही वाह है। टीचर्स हमारे आधे से ज्यादा टिकटॉक्स देख रहे हैं आजकल, टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, और उनका अपना विजन या एक्सपोजर कितना है, आप किसी से बात कर ले, आपको 2 लोगों का विजन, 2 लोगों का एक्सपोजर जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक उस पर काम नहीं होगा, हम एक्सपेक्ट ही ना करें कि हमारी नस्ल जो है ना वो पढ़ लिख जाएगी. सिर्फ ये 2% की बात तो नहीं हो रही जो अंग्रेजी स्कूल्स में जाते हैं, ये उनकी बात हो रही है जो मोर देन 98% है, और वो लोग गांव देहातों में जिनका ताल्लुक है. 70% से ज्यादा तो उमूमी है ना, वैसे मैं कहता हूँ कि मोर देन 98% है, उनकी बात हो रही है. तो दो लोगों की ट्रेनिंग, एक जो हमारे इमाम मस्जिद है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहां जहां जिस जिस मस्जिद में बैठे हुए उनको इस्लाम का सही इल्म होना जरूरी है. अगर उनका खुद इल्म सतही होगा, वो सतही इल्म लोगों को बताएंगे, इस्लाम समझ नहीं आएगा, लोग इस्लाम का गलत मतलब लेंगे, और फिर ऐसी जनरेशन तैयार होगी जैसी हम तैयार कर बैठे. नंबर वन. नंबर टू, हमारा उस्ताद जो बेसिकली पढ़ा रहा है, जब तक उसको नहीं पता होगा कि उसने क्या बताना है तो आगे कैसे डिलीवर करेगा. इन दो लोगों के ऊपर और जो इमाम मस्जिद है इनके ऊपर ऑब्वियसली मेहनत उन्होंने खुद करनी है, या फिर उनके जो अकाबरीन है उन्होंने करनी है. उन्होंने अपनी जो अपने जो मदरसे हैं उनका स्टैंडर्ड बेहतर करना है, मजहबी तालीम के साथ रस्मी तालीम को ऐड करना है, उनका विजन ब्रॉड करना है. अगर एक शख्स मौलवी साहब हैं, वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तो उनका पूरा राइट है कि शाम को वो वॉलीबॉल खेलें या क्रिकेट खेलें जाके, और किट पहन के खेलें, ट्राउजर पहन के खेलें. उसको उनको ट्रोल ना किया जाए कि मौलवी साहब तू सीधे ट्राउजर पाया. ये वो सारी बातें जो हमारे गाँव देहातों में होती हैं, मैं रहा हूं, मैंने देखी हैं, मैंने की हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात बता रहा हूं. कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो कि सतही बात होगी जिसका कोई ग्राउंड नहीं है या कोई बैकग्राउंड नहीं है. जिसका बैकग्राउंड है वही बात करूं. तो बेसिकली ये दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक हमारी मस्जिद और एक हमारा बेसिक स्कूल, इसको जब तक स्ट्रांग हम नहीं करेंगे माशरे में, हमारी जनरेशन में तब्दीली नहीं आ सकती है. जब ये दोनों चीजें ठीक होगी ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे सिर्फ टिकटॉक्स देखने के बजाय, अगर टिकटॉक देखेंगे भी तो वो थोड़ा सा रेलेवेंसी की जानिब जाएंगे, वो ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे जिससे उनका कोई फायदा नहीं है, थोड़ा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन पहले तो हम ये देखेंगे ना, देखना चाहिए ना कि जो उस्ताद मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है क्या वो खुद इस काबिल है कि मेरे बच्चे को पढ़ा सके, क्या खुद जो मौलवी साहब मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं मेरे बच्चे को, क्या खुद उनके इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या चार जंतरियां पढ़ के मौलवी बन गए. तो ये सारी चीजें जब तक इस पे काम नहीं होगा, बेसिक्स को हम ठीक नहीं कर सकते. और मेजर सर्जरी से हम शुरू हुए थे, मेजर सर्जरी हमें चाहिए. कड़वी बातें हम करने से डरते हैं, कड़वी बातें हम करें तो लोग गले पड़ते हैं, जी एक ऐ गल क्यों कीती है, कड़वी बातों से लोगों को गुस्ताखी की बू आना शुरू हो जाती है. नहीं, हकीकी बातें, दिल को दिमाग को खोलना पड़ेगा, दूसरे का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, उसकी गलत बात भी सुननी पड़ेगी. अगर आप गलत बात सुनेंगे तो उसका सही जवाब देंगे, जब आप सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे. आपको अच्छा बोलने के लिए हमेशा अच्छा सुनना जरूरी होता है. जब आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं. तो पहले हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. टाइम हो गया, ब्रेक भी नहीं चलाई हमने. आप पहले ब्रेक सुनिए, फिर मैं एक गाना इन करके निकल जाऊंगा. मेरी तरफ से साइन आउट है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने के बारे में मेहरबान.